body medicine, tools and techniques. एक्चुअली शरीर और मन का बड़ा गहरा संबंध है. मन एवरी सेकेंड, कहेंगे एवरी मिली सेकेंड, बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है. परंतु जो कम्युनिकेशन है वह सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, आपको पता नहीं चलता है. हाँ, कौन कौन जानना चाहते हैं कि भी सबकॉन्शियस लेवल पर कैसे कम्युनिकेशन होता है, जानना है? चलो, इनके लिए तो ताली बजा दो, इतने लोग हैं जो जानना चाहते. कल भी बताया था ना, ताली क्यों बजानी है? एप्रिशिएट करने के लिए, है ना. कोई अच्छी बात हो तो एक दूसरे को एप्रिशिएट करने के लिए ताली बजाओ, है? भले तो सीरियस टॉपिक है, फिर भी कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो, है? क्योंकि यही एक साधन है माइंड बॉडी मेडिसिन का, मैं बताऊंगा. अभी हंसना आता है ना, तो जरूर जोर से हंसना. हाँ, एक व्यक्ति भी जोर, हाँ हंसो हंसो. लाफिंग क्लब वाले है कोई? है? अच्छा, देखो आप पहले हंस के दिखाओ, इधर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ. चलो चलो स्टेज पे बुलाओ. ओके, चलो स्टेज पे बुलाएंगे आपको, हंसी की बात आएगी. तो सचमुच छोटी बात को भी बड़ी बना करके हंसो, है ना. इन चीजों को फील भी करना. तो देखो, जो लोग सचमुच जानना चाहते हैं कि भी कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो एक बहुत अच्छी सिंपल सा तरीका है, साधन है, कि मौन का अभ्यास करने लगो. थोड़ा भी, भले आधे घंटे से भी शुरू करो, कि भी आधा घंटा मौन में रहे, फिर धीरे धीरे उसे बताओ. तब अंदर में क्या चल रहा है उसका आपको पता चलेगा. दूसरा एक अच्छा सा साधन है साक्षी का अभ्यास करने लगो, ना, कि भी साक्षी भाव से देखो, न कुछ अच्छा है न बुरा है. यहां भी आए ना, बस जो जैसा है वैसा ही देखो. शरीर में जो फीलिंग्स हो रही है उसको भी साक्षी भाव से देखने लगो, तो आप देखेंगे कि वो जो अंदर में चल रहा है ना बाहर आएगा. कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग भी आए तो सोचो कि यह कुछ शायद पिछली 10 साल पहले की कोई घटना मुझे कुछ बता रही है. अंदर में भारीपन आ रहा है, टेंशन आ रहा है ना, डिप्रेसिव फीलिंग आ रही है, भले कोई कारण नहीं. तो इस कम्युनिकेशन को भी हमें समझने की जरूरत है. और ये इतना गहरा है संबंध कि हमारा ब्रेन 1000 से ज्यादा केमिकल्स निर्माण करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को निर्माण करता है. और एक एक जो आपको विचार आता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में परिवर्तन लाता है. यहां तक कि जो आपके इमोशंस है वह बॉडी में जबरदस्त शक्ति है अपने आप को स्वस्थ करने की, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं. परंतु यह जो नेगेटिव इमोशंस है उसी से यह डीएनए जो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, वो डीएनए की अपने आप को रिपेयर करने की जो क्षमता है वह डिस्टर्ब हो जाती है जब जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं. हाँ, इसलिए टोटली वह नेगेटिव इमोशन से मुक्त होना जरूरी है वास्तव में. और मन, हम सब जानते हैं कि भी मन अनेक बीमारियां निर्माण करता है. हाँ, एटलीस्ट एक कहेंगे कि कंजर्वेटिव अप्रोच में भी 60% फिजिकल डिजीज है वह मन से निर्माण होती है. और यही मन हमें स्वस्थ भी कर सकता है, अगर सही रूप से उपयोग किया जाए तो यह मन हमें स्वस्थ भी करता है. उसमें पावरफुल शक्ति है. लाइट को बंद कर दे अगर तो स्लाइड्स देख सके. एक महिला को पैरालिसिस का अटैक हुआ, वह बंबई की जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थी. करीब 4 मास हो गए उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं होती थी. डॉक्टरों ने कहा कि भी पता नहीं, हम सब कुछ कर चुके हैं, जो कुछ भी पॉसिबल है, इसकी हालत सुधर ही नहीं रही है, शायद किसी भी दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी. एक दिन उसके पति उसकी फ्रेंड है उसे मिलने के लिए आई, तो फ्रेंड से बात करते करते उसने कहा कि मुझे पक्का पता है कि मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी यह बात बताई नहीं। उसकी फ्रेंड ने जाके उसके पति को भी बता दिया कि जी तुम्हारी वाइफ ये बोल रही थी, तो है ना, तो सचमुच इमोशनल हो गए। रात भर उनको नींद नहीं आई, सोचने लगे कि बिल्कुल सत्य है कि मैं उसे इतना प्यार करता हूं कि शायद उसके बिगैर जी भी नहीं सकूंगा, परंतु ये मेरा संकोच है ना, ये मेरी ही एक कहेंगे शाइनेस है कि कभी मैंने ये बात है उसको बताई नहीं। दूसरे दिन हॉस्पिटल में गए तो उनकी आंखों में आंसू थे, बड़े भावुक होकर के उन्होंने यह बात बताई कि तुमने जो फ्रैंक को कहो बिल्कुल सत्य है, ये मेरी ही कमजोरी है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, कभी भी हमें छोड़ करके नहीं जाना। सच मानिए 5 घंटे में वह 10% इंप्रूव हो गई, 5 दिन में करीब 50% इंप्रूव हो गई, है ना, 7 दिन में तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया। बहने क्या सोच रही है मालूम है, मुझे आपके मन की बात समझ में आ जाती है। बहने सोच रही है मेरे पति को भी एक कॉन्फ्रेंस में लाना चाहिए था, दोबारा जरूर लेके आना। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। देखो क्या करना है पता है ना, मन में हो कोई गीत तो गुनगुना दीजिए, होठों पे आ जाए हंसी तो मुस्कुरा दीजिए, आई ही वो हमारी बात पसंद तो ताली बजा दीजिए। हाँ, कंजूसी नहीं करने की ताली बजाने, तभी तो खुशी आएगी ना। और इसमें भी किसी को शुरू करना पड़ेगा, हाँ तभी टोटल इंजॉय करेंगे। इवन कोई बहुत अच्छी चीज हो तो क्या करना चाहिए पता है, कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो क्या करने का, बोलो आहा, बोलो हाँ, कोई अच्छी बात लगे तो जरूर करना। क्यों पता है, कोई कोई लोग सो जाते, डायरेक्टली तो नहीं जगा सकते, तो आप बोलेंगे ना आहा, तो सोए हाँ चलो बच्चे बोलेंगे बहुत अच्छा है, हाँ बच्चे सुन रहे हैं, जो अच्छी बात हो ना तो जोर से बोलना, तो कुछ लोग सो गए वह जाग जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कार्ल यूंग, सेगमंड फ्रॉइड का नाम आपने सुना है शायद, कार्ल यूंग का नहीं सुना होगा, उनके बाद हुए कि जिन्होंने मनोविज्ञान में बहुत सारे आध्यात्मिकता के कंसेप्ट लाए, रिलीजन की बहुत सारी बातें वह लाए। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, उन्होंने यहां तक यह स्टेटमेंट दिया कि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा एक भी पेशेंट जब तक उसने आध्यात्मिकता को जीवन में नहीं अपनाया वह ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए अब आवश्यकता क्या है कि भी हम सबको भी, आप यहां से जाओ ना तो यहां ये जो कंसेप्ट आप सीख करके जा रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस में लाना है ना, प्रैक्टिकल। आप भले फिजिशियन है, आप गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, फिर भी इन चीजों की वैल्यू है, उसे अपनाइए, आप देखेंगे आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलने लगेगी। और माइंड बॉडी मेडिसिन की वैल्यू कितनी, जो हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन है ना वो बस इट्स ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक्चुअली इट इज द अदर थिंग्स। माइंड बॉडी मेडिसिन मतलब मैं चाहता हूं सारा, होलिस्टिकली इन टोटैलिटी। और बहुत सारी चीजें है कि जिसको हम महत्व नहीं देते हैं, हाँ उन चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। और सबसे पहला टूल जो है माइंड बॉडी मेडिसिन का वह है माइंड, और मन में देखो कितनी जबरदस्त शक्ति है। एक महिला को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेंगे, 2 महीने में ही उसको तो कुछ नहीं हुआ परंतु उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, एक छोटे से 6 मास के बच्चे को छोड़ करके गया, तो इतनी डिप्रेस्ड हो गई, उसने सोचा अभी 4 महीना क्या, एक दिन भी नहीं जीना, आज के आज ही मर जाऊं तो अच्छा है। इन थोड़े दिन के बाद उसने एक दिन वो छोटे बच्चे को रोते हुए देख लिया, देखो एक विचार में कितनी शक्ति है। उसने बच्चे को रोते हुए देखा तो बस एक विचार बदल गया, विचार आया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो बच्चे का क्या होगा। बस इस एक विचार से ही उसमें आ गया कि नहीं, मुझे जीना है। कब तक जीना है? जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए और कमाने नहीं लगे, मुझे जीना है। एक साल बीत गया, डॉक्टर ने कहा अरे कैंसर तो सारे अंगों में फैल गया है। तो उसने सोचा नहीं, मैं मरने वाली नहीं हूं, मैं जीने वाली हूं जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। 5 साल हो गए, डॉक्टर ने कहा कि अरे आपके प्रत्येक सेल में शायद कैंसर है, पता नहीं आप कैसे जी रहे। उसने कहा नहीं, मैं जीने वाली हूं। कब तक जीने वाली हूं? जब तक बच्चा बड़ा हो जाए। सच मानिए 25 साल हो गए, उस बच्चे ने MBA कर लिया, उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया, तीसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। आहा, नहीं करना पड़ेगा आपको ऐसे ही दे। तो यह शक्ति है एक विचार की, इसीलिए कहा है सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे खुद व खुद मिल जाएंगे। बस माइंड को यूज करना है भाई, एक सोच को बदल दीजिए और आपको बहुत सारा मिल रहा है। सबको मिल रहा है ना कि सोच को कहां पर बदलना है। हाँ, जैसे एनाल्जेसिक से दर्द कम होता है, एंटासिड से एसिडिटी कम होती है, ऐसे ही बहुत अच्छा टूल है रिलैक्सेशन। परंतु करोड़ रुपए का सवाल है कि रिलैक्स कैसे हो। किसको किसको मालूम नहीं है रिलैक्स कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा कि आप लोग ऑनेस्ट है, जिन्होंने हाथ भी उठाया ना, कुछ लोग तो जानते भी होंगे लेकिन बहुत सारे ऑनेस्ट नहीं है, है ना। ये टेक्निक को सीखना चाहिए। हाँ, मेडिटेशन बहुत अच्छी टेक्निक है और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बल आज तो टाइम नहीं है, जिसको कहते हैं जेकॉबसन्स मेथड, कि जिसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स किया जाता है। बल फिजिकल टेक्निक है बट इट्स ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव। सचमुच वह टेक्निक को सीखिए। और एक इंपॉर्टेंट टूल है, इस पर रिसर्च भी हुई है कि भी म्यूजिक। एक राजा को कहते नींद नहीं आ रही थी, बहुत सारे नहीं वैद्यों ने बहुत दवाइयां की, हकीमों ने दवाई की, नींद नहीं आ रही थी ना। एक म्यूजिशियन आया, उसने ऐसा राग छेड़ा कहते राजा 12 घंटा सोता रहा। तो ट्रैंक्विलाइजर से भी उसमें अधिक पावर है। देखो एक सिंपल सी चीज तो सब प्रैक्टिकली करना है, कॉन्फ्रेंस के बाद जाएंगे तो करेंगे साहब, यस और नो? बच्चे बोलते, बड़े नहीं बोलते। ये भी आपके क्लिनिक में हॉस्पिटल में है ना, सिंपल भी म्यूजिक सिस्टम लगा दो, सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता रहे, वेटिंग रूम में कम से कम बजता रहे, यहां से भी आपको बहुत सारी सीडीज मिलेगी, अच्छे अच्छे सॉफ्ट म्यूजिक को चुनिए। दैट इटसेल्फ विदाउट एफर्ट उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगी। एक्चुअली नेचर ऑफ द नेचर इज हार्मनी। तो बहुत अच्छा टूल है, जितना हो सके नेचर के साथ बिताइए। यहां पर भी आइए, देखो नेचर में हो ना, सचमुच ट्राई करिए। मैं नया फ्लैट ले रहा था, बहुत सारे फ्लैट्स देखे, भले एक छोटा सा फ्लैट था लेकिन सोचा इसी को खरीदना है। क्यों? क्योंकि उसमें बेडरूम इतना अच्छा था, सोते हैं लगता है गार्डन में सोए। आप आना कभी, आपको बताऊंगा कि भी सामने गार्डन है, लगता है बस गार्डन में ही हम सोए। तो नेचर के साथ जितना समय बिताएंगे आप स्वस्थ हो। अब देखो छोटा सा मैथमेटिकली आपको बताता हूं कि क्या करना है, माइंड बॉडी मेडिसिन का टूल क्या है। हाँ, देखते जाइए कि अगर नहीं ABCD को 1, 2, 3, 4 कर दे, A फॉर 1, Z फॉर 26, ठीक है। और फिर अब देखो 100 कहां बनता है, लव होता है 54, सुन रहे हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं है। लक इज इक्वल टू 47, लक को हम सब कुछ समझते हैं ना, परंतु लक कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है ना। फिर 100% क्या होता है देखो, मनी, पैसे को इंपॉर्टेंस देते हो ना, पैसा कितना होता है 72। हाँ, लीडरशिप को इंपॉर्टेंस देते हो ना, कितना होता है 89। हाँ, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वो सब भी 100 नहीं बनता है। तो फिर 100 किससे बनता है, देखो एटीट्यूड को करेंगे ना, तो एटीट्यूड इज 100। हाँ, इट इज हमारा जो अप्रोच है लाइफ के, तो एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि हमको हर प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। एटीट्यूड का कितना इम्पोर्टेंस है, कहते हैं खिड़की की सलाखों से देख रहा था नीचे कीचड़, तो आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो चांद में भी दाग देखा। यह है एटीट्यूड। कीचड़ में कमल देखने की आदत डालनी है, चांद में दाग नहीं देखना। अभी भी कुछ लोग कन्विंस नहीं हुए, मुझे मालूम पड़ जाता है, बहुत सालों से लेक्चर दे रहा हूं ना, ये फालतू ऐसे ही बोल रहे है ना। देखो अभी देखो, हाँ क्या दिखाई दे रहा है, किसको किसको वास दिखाई दे रहा है, हाथ उठाएंगे, वास किसको दिखाई दे रहा है, वास वास दिखाई दे रहा है। हाँ, अरे करो, मैं जवाब पूछू उसका जवाब दो, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने। वास दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसको किसको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, हाँ दोनों किसको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। देखो हाँ, जिनको एक दिखाई दे रहा ना, यहां वहां करके देखो, दोनों दिखाई देगा, दिखता है भी दोनों, वास भी है चेहरा भी है। अब डिपेंड करते हैं आप कौन से एंगल से दिखा, दोनों दोनों दिखा, हाथ उठाओ उठाओ, अभी भी नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, दोनों नहीं दिखा भाई साहब। अरे बाप रे, मैं मेरे को छोड़ देना पड़ेगा, आई विल हैव टू एंगल चेंज करो, यहां से देखो, यहां से देखो, दोनों दिखाई देगा आपको, दोनों चेहरे भी है, वास भी है। अच्छा, तो भी हम चलो अभी भी जो कन्हा देखना, अभी देखो, हाँ जिनको दो चीज नहीं, हाँ किसको दोनों नहीं दिखाई दे रहा, चलो अभी हाथ उठाओ, जिसको दोनों नहीं दिख रहा। अरे कहीं तो कहीं भी हाथ नहीं उठा रहे, नहीं दिखा। एक एक डॉक्टर साहब है जिसको ना, अभी डॉक्टर साहब इसको ध्यान से देखो, हाँ बूढ़ा और जवान दोनों दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ ओके, थैंक यू, ताली बजा दो डॉक्टर साहब के लिए। कि भी एंगल है, जो एंगल से देखते हो वैसा दिखाई देता है। तो बस जीवन भी ऐसा ही है। हाँ देखो, अच्छा लग रहा है सबको, हाँ अच्छा, देखो और पावरफुल टेक्निक, वेरी गुड, अच्छा चलो ताली बजा दो, अच्छा लग रहा है। अब देखो एकदम पावरफुल टेक्निक पे आते हैं। हाँ, अब माइंड बॉडी मेडिसिन को अगर सचमुच यूज करना है, तो हम सब में है ना नेगेटिव एक्सपीरियंस। कभी जीवन में आपको अन्याय हुआ, किसी ने आपका विश्वासघात किया है ना, कभी किसी ने बहुत बड़ा और प्रॉब्लम कर दिया, यू आर मेंटली और फिजिकली यू आर अब्यूज्ड, तो अगर माइंड, तो ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिलीज करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सब तैयार है, सब तैयार, कल भी के हाथ को ऐसे करिए, हाँ सब नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिलीज करने के तैयार है, एक दो लोग ही बोल रहे हैं, सब 100% आवाज सही। अभी भी है ना, हमारे बहनों, मुन्नी बहन जी को मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है, हैं? सब लोग कॉन्फ्रेंस में हाजिर है, हाँ सब नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिलीज करने के लिए तैयार है। अच्छा देखो, कमर को सीधी रख के बैठो, थोड़े आगे झुक के बैठो, देखो बरोबर ध्यान से देखना, ध्यान से इन्वॉल्व होना, अभी अच्छे से इन्वॉल्व होंगे तो आप इस बात को समझ सकेंगे। अब आज जो भी आप में, मेरे कुछ दो पेशेंट की बात है, मैंने ऐसे हजारों पेशेंट पर यह जो प्रैक्टिस है वह की है, हाँ, थेरापी जब देते हैं तो मैं आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की का एग्जाम्पल है, वो इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में 5 बार फेल हुई और उसके ये सब सिम्टम थे, बहुत गुस्सा आता था, टेंशन था, कंसंट्रेशन नहीं था, भूल जाती थी, डिप्रेशन होता था, एग्जाम में फेल हो गई, नींद नहीं आती थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, इन सब का हमने रूट देखा। जैसे भी नहीं, झाड़ का एक ही तो रूट होता है ना, तो इस सारे सिम्टम्स का बस 2-4 सेशन लगे, परंतु 3-4 सेशन में समझ में आ गया कि उसका रूट कॉज था कि मुझे कोई समझता नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, और बस हमने थोड़े ही समय में उसको चेंज कर दिया अलग अलग तरीके से, है ना। उसकी मां ने उसे एटीएम कार्ड दे दिया था कि बेटे जितना पैसा चाहे निकाल लो बैंक से। मैंने उसको कहा भी करोड़ों में आप एक ही होंगे कि जो मां बाप ने आपको एटीएम कार्ड दिया है, जितने पैसे चाहे आप निकाल सकते हो। तो पेरेंट्स अंडरस्टैंड्स यू, दे लव यू, ऐसी और बहुत सारी बातें बताई। सच मानिए, जब उसका वह रूट कॉज दूर हो गया, उसी साल वह इंजीनियरिंग में पास हो गई। मां बाप के लिए भी आश्चर्य, मुझे आके कहा डॉक्टर साहब आपने जादू किया, है ना। कोई जादू नहीं किया, सिर्फ उसका रूट है वह दूर कर दिया, है ना। ऐसे देखो, एक दूसरा केस है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का केस है कि भी जो डरते थे, उनका परफॉर्मेंस पुअर होता था, है ना। अच्छी कंपनी में जॉब था लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था, इंटरेस्ट नहीं था, निराशा होती थी, दुखी होते थे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते थे, है ना। इनका भी जब हमने रूट कॉज ढूंढा तो उनके पिता की, उनकी आयु छोटी थी, 15-16 साल के थे तब पिता की मृत्यु हो गई थी। बोलो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उनके अंकल्स ने उन लोगों को बहुत मदद की और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गए। लेकिन तब से जैसे पिता की मृत्यु हुई, कहते एक दो मास तक मेरे मन में यही विचार घूमता रहा कि अभी मैं अकेला हो गया हूं। देखो, है ना, उसका रूट यह था कि आई एम अलोन। बस उसको हमने दूर किया कि भी तुम अकेले नहीं हो, देखो कितने लोग तुम्हारे साथ। उसकी मदर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी आती थी, कहा देखो कितना इन लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, यह बात सिद्ध उसके बुद्धि में आ गई तो बस थोड़े ही दिनों में उमंग उत्साह से सारे सिम्टम्स खत्म। तो व्हाट वी नीड इज टू ओवरकम दैट रूट कॉज, है ना। अब क्या करना है पता है आपको, आगे क्यों बिठाया है, सचमुच ढूंढो कि भाई मेरी जो आज जो भी स्थिति है, मानसिक या शारीरिक, उसके पीछे कोई रूट कॉज है, सम एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ विच इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम, है, और वो एक्सपीरियंस कौन सा है, है ना। ढूंढो, अभी अभी ढूंढो। कैंसर पेशेंट्स के लिए भी माना गया, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि टाइप सी पर्सनालिटी वाले को बहुत ज्यादा कैंसर होता है। टाइप सी क्या है, टाइप ए तो सुना है ना, टाइप ए वाले जो परफेक्शनिस्ट है, जो बहुत फास्ट काम करते हैं, टेंशन में रहते हैं, एंशियस होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। ऐसे ही एक पर्सनालिटी और बताई गई, टाइप सी पर्सनालिटी, कि जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, बहुत अच्छा रहने की कोशिश करते, बल उनको चीजें कई बार पसंद नहीं होती है लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को दबा देते ना, ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और यह भी देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट, कैंसर के पेशेंट अपने आप से ही प्यार नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कोई मेंटल स्टेट हो तो उसे फाइंड आउट करना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां हम किसी को माफ नहीं कर पाते, है ना। आपको जीवन में अन्याय हुआ, किसी ने विश्वासघात किया, और कोई प्रॉब्लम हुआ, जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ये फाइंड आउट करो कि मैं किसको माफ नहीं कर पाता हूं, ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको हेल्दी जीना है तो इस बात को फाइंड आउट करो कि मैं, और अभी माफ क्यों करना है, हाँ पता किया, हाँ करो अभी। और देखो माफ क्यों करना है। कई लोग कहते हैं नहीं 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 मैं सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो दूसरे जन्म में भी इस प्रॉब्लम को लेके जाएंगे। और क्यों माफ करना है? हाँ क्योंकि, हाँ कहो भी, जिस भी बंदे को आपको माफ करने की जरूरत है अभी अभी सोचो, सोच रहे सब? हाँ सोचो कि मैं तुम्हें माफ कर देना चाहता हूं क्योंकि जो तुम्हारी इन्फ्लुएंस मेरी आत्मा पर है उससे मुझे मुक्त होना है ना, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस से मुक्त होना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। और अगर आप भूतकाल में जीना चाहते, भूतकाल से सुख पाना चाहते है ना, भूतकाल की बातों को याद करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी माफ अपने आप को भी नहीं कर सकेंगे औरों को भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए भूतकाल से मुक्त हो जाओ, तो भूत हो गया ना है ना, उससे सचमुच मुक्त हो जाओ। भूतकाल से मुक्त हो गए तो इजीली आप किसी को माफ भी कर सकेंगे। तैयार हुए अभी तक भी? हाँ सब खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से बैठे हैं ना। हाँ एक जन यहां आ जाओ जल्दी से, प्रेम भाई इधर आ जाओ फटाफट। मेरे फ्रेंड है। हाँ देखो, हाँ प्रेम भाई हमारे, हाँ हाँ अच्छा वेरी गुड। मैं तो भाई प्रेम भाई नजदीक में बैठे थे इसलिए बुला। देखो एक एक पार्टनर को ढूंढो, भाई भाइयों को पार्टनर बनाएंगे, बहने बहनों को पार्टनर बनाएगी। आप पति पत्नी है तो पार्टनर बन सकते हैं, घर में भी पार्टनर यहां भी पार्टनर। अच्छा हाँ अभी देखो, हाथ पकड़ो अपने पार्टनर का, दोनों हाथ। हाँ मैं माइक के सामने खड़ा हूं ना, पार्टनर का चेहरा देखो और सोचो वही व्यक्ति है जिसको आपको माफ करना है, वही बंदा है। मेरे जैसा टकलू हो तो वही इमेजिन करो, जो भी है इमेजिन करो। हाँ और अभी उसको माफ कर दो, बोलो कोई बात नहीं गलती हो गई मैं तुमको माफ कर देता हूं। सर पे हाथ रखो, कोई बात नहीं गलती हो गई मैं तुमको माफ कर देता हूं। अभी कुछ करो जिससे सिद्ध हो कि आपने माफ कर दिया। मैं करके दिखाऊं, सब मुझे फॉलो करेंगे? प्रॉमिस? करो करो, गले नहीं मिलेंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं, मैं बैठना नहीं है, गले मिलो मिलो। अच्छा माफ किया सबने, ओके बैठ सकते हैं। अच्छा लगा? कैसा लगा? आहा बोलना चाहिए ना, बोलते मैं ही बोलता हूं, बच्चे भी नहीं बोल रहे, बच्चे क्या कर रहे। तो सचमुच अभी भी है, एक दिन में नहीं होगा, और भी करना पड़ेगा। कई बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती पता है? एक्चुअली याद रखिए, देर आर नो इनक्यूरेबल डिजीज, देर आर ओनली इनक्यूरेबल पीपल है ना। हमें वो जो डीप लेवल पर नेगेटिविटी, हाँ हाँ करो करो, उसको दूर करना है। हाँ वह अंदर में कोई घो, उसको खत्म करो। अभी देखो पावरफुल चीज बताता हूं आपको, आज क्या हो रहा है पता है? सबको प्रॉब्लम है। मैं करीब 30 साल से साइकेट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूं, देखा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, सबको प्रॉब्लम है। लेकिन आज हो रहा है क्या, हमारे प्रॉब्लम है ना वो गोल्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे, चित्र में देख रहे हो ना, गोल्स को प्रेस कर रहे, तो क्या हो रहा है, आपका गोल छोटा हो रहा है, जीवन का आनंद कम हो रहा है, खुशी कम हो रही है। अब हमें करने की क्या जरूरत है कि आपके गोल्स है ना वो प्रॉब्लम पर प्रेशर डाले ना, गोल्स को अच्छा बनाओ, वो प्रॉब्लम पर प्रेस करे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा, गोल बड़ा हो जाएगा। या देखो भी आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है वो प्रॉब्लम है ना, एचएससी में पढ़ नहीं रहा है, आप भी चाहते हैं वो डॉक्टर बने तो वो प्रॉब्लम है। ये नहीं सोचो कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचो, ये सोचो बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। और आप तरीका ढूंढो, देखो मिल जाएगा, रियल है। डॉक्टर गिरीश शाह जहां मैं रहता हूं बोरीवली में, फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट है, कई साल पहले की बात है, हाँ एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, बड़े फेमस है, शायद 10-10:30 बजे तक प्रैक्टिस करते होंगे, कहते घर जाके भी मैं बेटे को पढ़ाता हूं, 12-12:30 तक उसको पढ़ाता हूं, आज बेटा बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। सो आप में वो होना चाहिए, सारा दिन प्रैक्टिस करते फिर भी, क्योंकि अंदर में इंथू ये गोल है कि भी बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, फादर इज अ बेस्ट पर्सन टू टीच। तो बस इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, हाँ आप सचमुच माइंड बॉडी मेडिसिन को यूज करेंगे। अब जो बहुत अच्छा टूल है वह है एलिवेटेड थॉट्स, है ना। पॉजिटिव थॉट्स तो ऑर्डिनरी चीज है ना, एक्चुअल क्या जरूरी है वह है एलिवेटेड थॉट्स, हाँ आत्मा के विचार, परमात्मा के विचार, यह है एलिवेटेड थॉट। देखो एलिवेटेड थॉट्स में कितनी जबरदस्त शक्ति, आपको बताता हूं कि जो कोई दवाई नहीं कर सकती, यह सत्य घटना है। कटक में मैं 1982 में कटक गया था, तो तब एक महिला से मेरा परिचय कराया गया, वो आपकी तरह ही थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, पीसफुल थी, सिर्फ ये बताया गया कि भी उनके जीवन में बहुत बड़ा हादसा हुआ है ना, उनके पति का हर्निया का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने कहा था कि भी ये तो रूटीन ऑपरेशन है, हम रोज करते हैं, कोई डरने की बात नहीं, पता नहीं कहां पर गलती हुई, जब उनको एनेस्थीसिया दिया गया तो कोमा में चले गए, कोमा से बाहर ही नहीं आए, है ना। पहले तो उनको आशा थी, सारे भारत में बड़े बड़े सेंटर्स में ले गए, लेकिन जब उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, है ना, और वो कोमा में रहे 6-7 मास के बाद उनकी पत्नी को डिप्रेशन आ गया, उसने 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एंड एज एन पर्सन इन साइकोलॉजी आई नो कि भी ऐसे पेशेंट रिकवर नहीं होते, बिकॉज देयर इज अ रियल प्रॉब्लम, हाँ कोई आर्टिफिशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो मुझे मिली तो एकदम ठीक थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि भी कैसे ठीक हो गए। मैंने उसको पूछा भी कि भी कौन सी बात ने आपको मदद की, वह पिन पॉइंट भी कर पाई। उसने कहा कि भाई पहले तो मुझे कोई आध्यात्मिकता में रुचि नहीं थी, मेरी सास ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाती थी, मैं भी जाती रही, और ब्रह्मा कुमारी बहन मेरा दुख सुनती थी इसलिए मैं वहां जाती रही। लेकिन उसने कहा कि भी 1-2 दिन में ही मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे, उसने बताया कि जब मुझे कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया, जब मेरी बुद्धि में यह बात अच्छे से बैठ गई कि भी ये कर्मों का हिसाब है, भी मेरे पास 2 ही चॉइस है, एक तो आत्महत्या करूं, दूसरी चॉइस है कि स्वस्थता से इसका सामना करूं, आत्महत्या करूं तो भी दूसरे जन्म में वो प्रॉब्लम आना ही आना है, तो बेटर तो भी आज पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है, देवर गुड बिजनेस पीपल, और तो सब कुछ है, नौकर है, सब है, क्यों नहीं स्वस्थता से इस समस्या का सामना करूं। कहते कई बार, 100 बार 200 बार मैंने सोचा होगा, 2 दिन, 3रे दिन मैं ठीक हो गई। दिस इज द पावर ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। तो सचमुच इस पर ध्यान देना, इसको अच्छे से सीखना है। वेरी गुड। और एक पावरफुल टूल है, वह है हमारी मान्यता, बिलीफ सिस्टम। जो मान्यता जो है वह आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में यह मान्यता है कि अगर आप जंगली मुर्गी का मांस खाएंगे तो उसमें श्राप होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक दिन एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया, उसने हंसते हंसते कहा कि जंगली मुर्गी का मांस खाएगा, तुझे कहा अरे तुझे मालूम नहीं है इसमें तो श्राप होता है, कैसी बात करता है। वो तो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा 1 साल पहले तू मेरे पास आया था, मैंने तुझे यही मांस खिलाया था, तब तो मजे से खा गया था, अभी बोलता है उसमें श्राप होता है। जैसे उसने सुना वह कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। सच मानिए 5 मिनट में तो उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी जो मृत्यु है उसके लिए मेडिकल साइंस में एक शब्द भी है, वूडू डेथ्स, है ना। तो किसने उसको मारा, किसने मारा, उसकी मान्यता ने उसे मारा। हाँ, अगर उसमें सचमुच कुछ होता तो एक साल पहले मरना चाहिए था, है ना। तो बिलीफ सिस्टम में सचमुच इनॉर्मस पावर है। जैसे मैंने माफ करने की बात की ना, तो भी आप में से भी कई लोग कहते डॉक्टर मैं कभी माफ नहीं कर सकता, है ना। थेरापी में भी जब हम कराते हैं तो कुछ लोग दो महीने के बाद भी कहते डॉक्टर नहीं नहीं आप कितना भी समझा मैं माफ नहीं कर सकता। परंतु देखो एक उदाहरण आपको देता हूं कि भी मान्यता में कितनी बड़ी शक्ति है। ग्राहम स्टील का उदाहरण सुना है ना, उड़ीसा में एक पादरी थे, उनको और उनके बेटों को जिंदा जला दिया गया था। एक साल के बाद उनकी पत्नी को कोई पत्रकार ने पूछा कि आपके मन में आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में क्या भावना है ना। तो उस महिला ने कहा कि जिस दिन यह हत्या हुई उसी दिन मैंने माफ कर दिया था। और ये पावर मान्यता में भी, बाइबल में ये बात है ना कि भी जिसके कारण भाई जो इसको मानते हैं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा ना, परंतु सचमुच जो बात को बताया जाता है ना, धर्म में जो बात सिखाई जाती है, जिस पर एम्फेसिस दिया जाता है, उसमें जबरदस्त शक्ति है। तो सचमुच जो सही बिलीफ सिस्टम है उसको डेवलप करिए। देखो मैं आपको एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कराना चाहता हूं, दो तीन दिन में आ जाएगी। वो क्या है पता है कि आप परमात्मा के घर में आए हैं। श्योर सबको हो गया पक्का कि भी भगवान के घर में आए हैं, हुआ कि नहीं? जवाब नहीं देते मतलब नहीं आए। भले यहां शराब नहीं मिलती है परंतु भगवान का ही घर है। ओके, तो क्या सोचना है पता है? देखो एक बिलीफ सिस्टम सबको बोलना है। हाँ, क्या बोलना है पता है? कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिमान। ठीक है, हाथ ऐसे करेंगे सब करो। हाँ, मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे सबको जोर से बोलना है। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अच्छे से नहीं बोल रहे अभी, अच्छे से बोलना है। क्या लॉजिक? नहीं, लॉजिक को बाजू में रख दो, है ना। लॉजिकल ब्रेन है ना, वो अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पागलपन भी होना चाहिए। देखो जोर से बोलना, अच्छे से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हाँ, देखो अच्छा लगा ना ऐसे रोज बोलने का। और भी अच्छी अच्छी बिलीफ सिस्टम लेकर के जाना कि जिससे पूरा चेंज आ जाए। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन फैक्ट कि जिस पर काफी रिसर्च भी हुई है, वह है विजुअलाइजेशन। कहा गया कि भी इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। या तो देखो माइंड बॉडी मेडिसिन में क्या करना है पता है? ब्रेन की एक वीकनेस का उपयोग करना है। कहते ना कुछ आपको प्राप्त करना है ना, तो भी उस व्यक्ति की कमजोरी को ढूंढ निकालो और वो कमजोरी को यूज करो। देखो ब्रेन की एक कमजोरी आपको बता देता हूं। ब्रेन की कमजोरी यह है कि वह रियल एक्सपीरियंस और इमेजिनरी एक्सपीरियंस का डिफरेंस नहीं जानता है। ब्रेन के लिए जब आप इमेजिन भी करते हो, पिक्चराइज भी करते हो, तो वह रियल ही है। तो अगर अच्छे से आप पिक्चराइज करने लगो, कार्लो साइमोंटोन ने एक बहुत अच्छी किताब है, मिले तो जरूर पढ़ना, गेटिंग वेल अगेन। मेरी किताबों में भी उनका जिक्र है कि जो विजुअलाइजेशन के द्वारा उन्होंने कैंसर पेशेंट को भी ठीक किया। और मैं समझता हूं अगर अच्छे से काम हो, एक पूरी नई मेडिसिन की ब्रांच डेवलप हो सकती है कि कैसे विजुअलाइजेशन कर करके पेशेंट को ठीक करना। हमने डायबिटीज के पेशेंट पर काफी कार्य किया है, प्रैक्टिकली उनको बैठ के करवाते कि भी कैसे आप पेनक्रियास को आराम दो, इंसुलिन को बॉडी सेल्स में मसल्स में भेजो, है ना, पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करो, और प्रैक्टिकल उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब क्या करना है? माइंड बॉडी मेडिसिन सब डॉक्टर डॉक्टर्स को तो ये जरूर जरूर करना है ना, इसीलिए इस स्लाइड को मैंने चूज किया। क्योंकि जब आप पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो पेशेंट का ऑरा भी आपको इफेक्ट करता है, इसीलिए ना डॉक्टर ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सारा दिन पेशेंट के संपर्क में हम आते हैं, है ना, उनका नेगेटिव ऑरा है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। और आपको सचमुच माइंड बॉडी मेडिसिन यूज करनी है तो डू समथिंग कि जिससे पेशेंट का ऑरा है वो आपको इन्फ्लुएंस ना करे। एक तो क्या करना पड़ेगा, अपने ऑरा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, है ना। आपका ऑरा जितना पावरफुल होगा तो आपका ऑरा पेशेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, पेशेंट का आपको नहीं करेगा। और दूसरा क्या करना चाहिए पता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये काम को करो। करेंगे सब ना, करेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना पागलों का डॉक्टर है, पागल जैसी बातें करते हैं, करेंगे। देखो है ना, थोड़ी थोड़ी की देर के बाद, हाँ, पेशेंट के सामने नहीं करना अकेले में करना, ऐसे ऐसे करो करो करो। सोचो सारे नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे, सारा नेगेटिव ऑरा दूर दूर गया गया गया, भाग जा भाग जा भाग जा, बोलो बोलो, गया गया गया, सारा नेगेटिव ऑरा खत्म जरूर करो। हाँ, ओके, चलो फिर पूछना, आगे पूछना फिर। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट बात एकदम, कि एक पावरफुल टूल है माइंड बॉडी मेडिसिन का, कि पेशेंट्स में होप को इंस्टिल करो। और ये आपने किया ना तो ट्रीटमेंट की शुरुआत होने से पहले ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। बर्नी सीगल ने बहुत अच्छी किताबें लिखी है ना, उनके किताब में उदाहरण आता है, एक कैंसर का पेशेंट उनके पास आया, उनको उन्होंने बहुत कुछ ऐसी जो मैं बता रहा हूं ऐसे अच्छी अच्छी बातें बताई, उसमें होप भरा कि तुम बहुत जी सकते हो, एकदम बीमारी ठीक हो जाएगी, पॉजिटिव अप्रोच रखो, ये या करो, सब बताया। और फिर थोड़े दिन के बाद वह दूसरे डॉक्टर के पास गए, है ना, MRI लेकर के गए, MRI को देख करके वह डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लगता है कि कीमोथेरेपी काम करने लगी है। उन्होंने कीमोथेरेपी स्टार्ट ही नहीं की थी। तो फिर वो पेशेंट ने सोचा, सचमुच वो टकलू डॉक्टर ने जो मुझे बोला ना वो काम कर गया मैं ठीक होने लगी। वैसे होप को कभी भी, हाँ देखो मैं एक बात बताता हूं, कभी पेशेंट को नहीं बोलो तुम 6 महीना जियोगे, 1 साल जियोगे। मनु कोठारी आप जानते, फेमस एनाटॉमिस्ट थे, जो अभी भी कैंसर के पेशेंट पे काम करते, कहते मुझे आके कई पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कितना जीऊंगा, तो कहते हैं कि तुम मेरी स्मशान यात्रा में भी आ सकते हो तो सचमुच बोलो तुम बहुत जीने वाले ना। अब देखो होप का महत्व क्या है, आपको बताओ, बहुत अच्छा ये PPT है, बहुत अच्छी, हाँ, कि एक कमरे में 4 मोमबत्तियां हैं, वह जल रही थी, तो और इतना वातावरण शांत था, हाँ, कि धीरे धीरे जो आपस में बातें कर रही थी ना वो भी हम सुन सकते हैं। तो एक मोमबत्ती ने कहा कि मैं शांति हूं, लेकिन आज दुनिया में कोई भी शांति नहीं चाहता है, मैं अब कोई काम की नहीं हूं, तो अब मैं शायद बुझ जाती हूं, और शांति बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा कि भी मैं फेथ हूं, लेकिन आज लोगों को फेथ है ही नहीं, अपने ही लोगों पर फेथ नहीं है, जैसा उसने बोला एक हवा का झोंका आया और वो मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती आई जिसने कहा कि मैं प्यार हूं, आज लोग प्यार को कोई महत्व नहीं देते हैं, प्यार का महत्व नहीं समझते, मैं भी कोई काम की नहीं हूं, और अभी मुझे भी रुक करके कोई फायदा नहीं है, वह भी बुझ गई। हाँ, उतने में एक बच्चा उस कमरे में आया, उसने देखा कि ये 3 मोमबत्तियां बुझ गए, रोने लगा, मोमबत्ती है 3 बुझ गई, है ना। तो उतने में उसको आवाज सुनी, चौथी मोमबत्ती ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, कि जब तक मैं हूं कोई चिंता की बात नहीं, और मैं हूं आशा, मैं हूं होप। कि जब तक होप है कोई बात से डरने की जरूरत नहीं है। और बच्चा एकदम खुश हो गया, उसने आशा को लिया हाथ में और दूसरी तीन मोमबत्ती को फिर से जला दिया। हाँ, तो क्या करो भाई, सब कुछ खो जाए लेकिन होप न खो। पैसा जाए तो जाए परंतु आशा नहीं जाए, प्रतिष्ठा गई तो गई परंतु आशा नहीं जानी चाहिए, बस पक्का करना। हाँ, तो आशा होगी तो फेथ, पीस, लव सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तीनों चीजें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएगी ना। हैव अ नाइस लाइफ, नॉट अ नाइस डे। ओके, देखो अब एक्चुअली करना क्या है हमें पता है। जब समस्या आती है ना तब हम सोचते हैं ना, क्यों भगवान मुझे ही दुख दिया, भगवान को मैं ही मिला था क्या, है ना। डायबिटीज के पेशेंट भी हमको कहते मुझे क्यों डायबिटीज दिया, पड़ोसी को नहीं दिया, मैं खाली मिला था क्या, है ना। तो क्या करना चाहिए पता है, ये नहीं कहो वाई मी लॉर्ड नहीं, क्या कहेंगे, ट्राई मी लॉर्ड बोलेंगे। बोलेंगे देखो हाथ को ऐसे करो, चित्र में बताएं, हाँ बोलो, हाँ ट्राई मी लॉर्ड। थोड़े ही लोग बोल रहे, देखो कितना अच्छा आवाज आ रहा है, सब बोलेंगे तो बोलो ट्राई मी लॉर्ड, ट्राई मी लॉर्ड। और एक बार बोलो भगवान देखो मेरे में कितनी शक्ति है, समस्याएं दे मैं उसका सामना करूंगा। बोलेंगे अच्छा, ओके, देखो अच्छा लगा ना। और अब देखो क्या करना, ये याद रखो कि गॉड्स डिले आर नॉट गॉड्स डिनायर, है ना। कभी देरी हो सकती है, भगवान के घर में देर है परंतु पक्का है ना। तो इसलिए बस ये पक्का करो, आशा को छोड़ना नहीं, वेरी गुड। देखो हाँ, अब सिंपल सी कुछ बातें, बट स्टिल नो दे आर टूल्स ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन। वन इज एक्सरसाइज, सवेरे भी एक्सरसाइज कराई थी, अच्छा लगा था ना। तो देखो हाँ, प्लेजेंट लेवल तक करो, बहुत ज्यादा नहीं करो, थक जाओ इतना नहीं, बोले अभी 10 मिनट कर सकते हो 10 मिनट ही करो, प्लेजेंटली टायर्ड हो जाओ रुक जाओ, है ना। एवरी 4-5 डेज आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बस रेग्यूलर करना। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और भागने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, परिस्थिति से दूर नहीं भागना है, उसका सामना जरूर करना है। कहीं 5-5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, भले उनको तो फायदा होता है लेकिन घर वालों को तकलीफ होती है ना। समस्या से दूर भागने के लिए 5-5 घंटा वॉकिंग कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अब देखो ये कभी भी हंसते नहीं है। विलियम ऑस्लर, दिस आर नो फिजिशियंस हैव सेड, मैं नहीं बोलता हूं, कि लाफ्टर इज म्यूजिक ऑफ लाइफ। हाँ, तो छोटी बात को बड़ी बना के हंसो, औरों पे नहीं हंसो, अपने आप पे हंसो। हाँ, और लाफ्टर क्या है, लाफ्टर इज इंटरनल जॉगिंग एंड डीप मसाज। अच्छे से हंसो ना अगर तो भी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स निर्माण होता है, वह रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक चलता है। तो बोले कहीं लाफिंग क्लब में जाओ, घर में भी कमरा बंद करके भी हंसो। अच्छा अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर का भी थोड़ा टाइम देना है। देखो रोना भी ठीक है, पर रोज रोज नहीं रोना चाहिए, परंतु कभी बहुत समस्या आ जाए, आपको लगे कि अभी इट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल, भले अच्छे से रो भी लो, है ना। बाहर का रोना अच्छा है, अंदर में नहीं रोना है। देखो बहनों को क्यों टेंशन कम होता है पता है, हाँ नल शुरू हो जाता है ना, कभी कभी हो अच्छी बात है ना? भाई अंदर ही रोते हैं तो इसलिए बीमार होते, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोरोनरी ब्लॉक्स हो जाते हैं। अब देखो आप जो जानना चाहते हैं ना उस बात पर आता हूं, मोस्ट पावरफुल चीज, हाँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सब तैयार है इसको समझने के लिए कि माइंड बॉडी मेडिसिन का सबसे 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 इंपॉर्टेंट जो टूल है वह क्या है पता है? कि मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस है। डिटेल में नहीं जाता हूं, आज मैं आपको और कुछ बात बताना चाहता हूं। वह है कि वह सुप्रा कॉन्शियस को जगा दो, जो इनर मोस्ट पॉइंट है। इफ दिस इज कॉन्शियसनेस, वह डीपेस्ट लेवल है सुप्रा कॉन्शियस। और सुप्रा कॉन्शियस क्या है? पहले तो सुप्रा कॉन्शियस को जगाना, क्योंकि उसमें इनॉर्मस कैपेसिटी है। सुप्रा कॉन्शियस इज सुपर इंटेलिजेंट, सुप्रा कॉन्शियस हैज अनलिमिटेड पावर। जो आप इसकी कल्पना नहीं की हो, इतनी पावर सुप्रा कॉन्शियस में है। सुप्रा कॉन्शियस में इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है, इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजर। और सुप्रा कॉन्शियस इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ पीस एंड ब्लिस। लेकिन जो सब वो ब्लॉक्स है ना, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंत में मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है माइंड बॉडी मेडिसिन का, वह है टू अवेकन द सुप्रा कॉन्शियस। और कब अवेकन करेंगे? सुप्रा कॉन्शियस इज द डीपेस्ट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे सागर के तले में जाते हैं ना, ऐसे ही आत्मा की गहराई में जाना पड़ेगा, है ना, मन की भी गहराई में जाइए। और अभी मौका है, और तीन दिन आप यहां रहेंगे, है ना, घूमने नहीं जाओ, हाँ घूमने के लिए तो वापस भी आ सकते हो, बोले थोड़ा एक दो अच्छी जगह है, नहीं तो माउंट आबू में कोई बहुत कुछ नहीं है। यहां पर ही मौका देखो, भी फ्री टाइम हो ना, मेडिटेशन रूम में जाके गहरा योग करो, है ना, मॉर्निंग का सेशन मिस नहीं करो। 4 बजे आए थे, कौन कौन आए थे 4 बजे के सेशन में? चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे थे 4 बजे उठ के आए। अभी भी नहीं आए थे, कल जरूर आना, है ना, मौका है कि भाई सवेरे उठ के अच्छा योग करना, इसके डीप में जाना। एक बार सुप्रा कॉन्शियस जाग गया ना, तो अनेक जन्म आप स्वस्थ रहेंगे, एक जन्म ही नहीं, आपको बताएंगे भी बहने, 21 जन्मों के लिए स्वस्थ रहेंगे। हाँ, आप कहेंगे कि भाई ये आप सब डॉक्टर्स हैं ना, सबको एविडेंस चाहिए कि भाई प्रमाण क्या है। देखो आपको प्रमाण बताता हूं, हमने 2 रिसर्चेस की है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, वो दिस आर पब्लिश स्टडीज। एक स्टडी की ईईजी की, वहां पे 16 लोगों को, है ना, हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, कि कुछ लोगों ने मेडिटेशन किया, कुछ लोगों ने म्यूजिक सुना। पहले उनका ईईजी किया गया, वापस एंड में ईईजी किया, फिर मेंटल एरिथमेटिक दिया उनको, सिंपल मेंटल एरिथमेटिक, और फिर से ईईजी किया। हाँ, तो एक तो मुझे ये पता चला ये रिसर्च के दौरान कि हम मैथमेटिक्स में कितने कमजोर हैं। मैं उनको पूछता था कि भी 100 में से 7 कम करो, तो बोलते थे 93, फिर बोलते थे उसमें से 9 कम करो, तो सोचने लगते थे क्या आएगा आंसर। और फिर से उनका ईईजी किया गया, तो आप देखिए ना, दिस इज अ कंप्यूटराइज थिंग। जो ये है म्यूजिक ग्रुप का है कि भी जिन्होंने म्यूजिक सुना, तो आप देखेंगे जो लाल है ना, दैट इज अ बीटा पैटर्न, है ना, बीटा वेव्स हैव इंक्रीज्ड। जैसे ही मेंटल एरिथमेटिक देने लगे, बीटा पैटर्न एकदम बढ़ गए। कोई कोई केस में ही अल्फा और थीटा थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, देख रहे हैं ना सर। और अभी यही कंपैरिजन देखो मेडिटेशन ग्रुप में, कि जिनको और सिंपल मेडिटेशन, आपको तो कुछ समझा है, वहां कुछ सिखाया नहीं गया था, बस लोग लैब में आए, उन्होंने एक चीट को उठाया जिसमें लिखा था M, एक में लिखा था C। हाँ, लोग हंसते हंसते आते थे, मेरा सी निकला, मेरा एम निकला। सी मतलब कंट्रोल, एम का मतलब था मेडिटेशन। और उनका जो सवेरे मैंने आपको कमेंट्री दी थी ना एक्सरसाइज के बाद, बस वैसे ही उनको कमेंट्री दी। और आप देखिए, अभी बीटा पैटर्न जो है वह कितनों में कम हो गया, बढ़ा नहीं, उल्टा आप देखेंगे थीटा भी काफी लोगों में बढ़ा है, कि विच इट्सेल्फ इज अ पावरफुल एविडेंस। अगर काम करते समय आप अल्फा पैटर्न को मेंटेन कर सको, तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपकी एनर्जी को आप बचा सकते हो। और देखो, इससे भी पावरफुल रिसर्च बताता हूं, की, जिसके बाद मेरा भी मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ा है। हमारी रिसर्च नहीं है, है ना, इस रिसर्च में फंक्शनल एमआरआई के द्वारा जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनमें फंक्शनल एमआरआई की गई। 2009 में यह स्टडी पब्लिश हुई है जो शो करता है कि कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ी, बस थोड़ी सी 1/1000 इंच, लेकिन इतना सा भी कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और एक रिसर्च हुई कि मेडिटेशन के द्वारा डोपामाइन की रिलीज बढ़ जाती है। एक सब्सटेंस होता है सी रेक्लोपाइड, जितना ब्रेन उसे कम एब्सॉर्ब करता है उतना ये एंडोर जो है डोपामाइन ज्यादा रिलीज होते। तो देखा कि ऑलमोस्ट 8% जो मेडिटेटर्स थे उसमें कम एब्सॉर्ब होता था। इट मींस ऑलमोस्ट 60% ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है मेडिटेटर्स में। दैट इट्सेल्फ इज अगेन अ पावरफुल एविडेंस कि भी हमें क्यों मेडिटेशन के लिए टाइम देना चाहिए। ये और एक रिसर्च की है कि जो एक पीआईपी कैमरा होता है, आपने ऑरा कैमरा सुना है, क्रिलियन फोटोग्राफी, यह है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी, गंगाराम हॉस्पिटल में है यह कैमरा, कि वह भी सेम चीज की जो ईईजी के लिए की थी। और उसमें यह देखिए आपकी बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन, हाँ इनको म्यूजिक सुनाया गया था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आफ्टर मेडिटेशन इज मोर और लेस सेम। यह वहां के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है ना, उनमें भी देखो फर्क है थोड़ा सा, लेकिन मेडिटेशन के दौरान उनको नींद आने लगी, है ना, तो इतना फर्क नहीं आया है ना। ये मेरा है, बस मैंने कुछ नहीं किया था, वहां छोटा सा कमरा था, वहां बैठ करके 20 मिनट मेडिटेशन किया। आप गले में देखिए बहुत बड़ा रेड पैच है बिफोर मेडिटेशन, और आफ्टर मेडिटेशन वो पैच कम होने लगा, विच शोज दैट ऑरा वॉज बैड। बल अभी बीमारी नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है कि इफ यू कैन रिमूव इट इज वंडरफुल। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा आप मेडिटेशन करके आज्ञा चक्र है वह आपका ओपन हो रहा है। इनमें हमने सबसे अच्छा परिणाम देखा है, वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर है, आप देखिए मेंटल स्टेट भी है और अब ये साइड का व्हाइट होने लगा है, विच इज अ वंडरफुल अचीवमेंट। तो दीज आर एविडेंसेस कि जो प्रैक्टिकली मेडिटेशन से परिवर्तन आते हैं। अब देखो भी फर्क क्या है, भी मेडिटेशन को क्यों टूल अपनाना है, कि भी हमारे में ब्लॉक्स है ऑलरेडी आपने देखा आगे कॉन्शियसनेस में। जब आप रिलैक्सेशन करते हो, साइकोथेरापी करते हो, तो भी ये शायद ब्लॉक्स कम जरूर होते हैं लेकिन टोटली खत्म नहीं होते हैं, परंतु मेडिटेशन से इस ब्लॉक्स को हम कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं। ये शायद सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि ब्लॉक्स को हम कंप्लीटली इरेज कर सके। बिकॉज वेन यू गेट एब्सॉर्ब, आप मेडिटेशन में एब्सॉर्ब होते हैं ना, तब जो डीप रूटेड ब्लॉक्स भले पूर्व जन्म के ही आपको याद नहीं है, लेकिन वो एब्सॉर्प्शन की स्थिति में वह इरेज होते जाते हैं और पूरा आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए यह करना है, सब करेंगे। देखो क्या करना है पता है, कहते हैं समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा बलवान जिसमें पर्वत भी ढल जाया करते हैं। अक्सर लोग आया और जाया करते हैं, परंतु आप जैसे कुछ लोग इतिहास बनाया करते हैं। क्या करना है हमको, ये माइंड बॉडी मेडिसिन का क्या करना है, इतिहास बनाना है। और उसके लिए देखो और एक सिंपल सी चीज बताता हूं, हाँ कि भी आज है ना हमारी स्थिति ऐसी है कि जो सुप्रा कॉन्शियस में अनलिमिटेड ब्लिस, अनलिमिटेड पावर है, ट्रेजर हाउस है वो सुप्रा कॉन्शियस, वो हम नहीं फील कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। जो आपको यहां भी अभी आके शांति मिल रही है वो तो पाई पैसे की बात है, परंतु सचमुच वो ट्रेजर हाउस को, सुप्रा कॉन्शियस की हैप्पीनेस, सुप्रा कॉन्शियस का आनंद पाना होना, तो ब्लॉक्स को दूर करना पड़ेगा ना। देखो वो दूर थोड़े भी होंगे तो ऐसी स्थिति, ये तभी थोड़े थोड़े ही दूर हुए, टोटली दूर हो जाए तो सचमुच पूरा आनंद, पूरी खुशी का अनुभव आप अपने जीवन में कर पाएंगे। बोले ना सचमुच करना चाहिए। अच्छा लगा? हाँ नहीं लगा, दो चार लोगों को ही लगा। अच्छा ताली बजा के बता दे कि अच्छा लगा। ये तो है ना, एक टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, हाँ पूरा पिक्चर देखना है, थोड़े लोगों को ही देखना है, किसको किसको देखना, पूरा पिक्चर किसको देखना है। अच्छा चलो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू, पूरा पिक्चर देखना है आप। हाँ तो ऐसे पूरे सेमिनार भी होते, आज तो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैं ऐसे सेशंस मेरे होते हैं मेनली दिल्ली में होते, दिल्ली के पास गुड़गांव में हमारा एक कॉम्प्लेक्स है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, हैदराबाद में भी मैं कराता हूं, जिसका नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको इंटरेस्ट हो तो आपके फोन नंबर ईमेल मुझे देना। हाँ तो जब भी ये साल में तीन चार बार होते तब भी आपको इन्वाइट करेंगे, पूरे चार दिन के, यही बात जो मैंने आपको बताई ना वो पूरा डिटेल में करते, प्रैक्टिकली वो बात जीवन में आ जाती है। लोग समझते हैं कि भी हम 100% रिलीज हो गए। इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं, ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूज रखना, ज्ञान की जो बातें बताई ना, ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूज रखना, दूर दूर तक अंधेरी रात होगी, अकेले हो तुम अकेले है हम, फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।